पृष्ठ संख्या 44। सांस्कृतिक संगम के कवि रहीम। मैंने आज के व्याख्यान का विषय चुना है सांस्कृतिक संगम के कवि रहीम। सत्य प्रकाश जी ने साहित्य आलोचना के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किए हैं उनमें एक है रहीम की रचनाओं का संग्रह, संपादन और प्रकाशन, और उसके साथ ही एक अत्यंत सुपठित, सुचिंतित और सुव्यवस्थित भूमिका। आप में से बहुत लोग सत्य प्रकाश जी द्वारा संपादित रहीम रचनावली से परिचित हैं। मैं रहीम पर जिस दृष्टि से बात करना चाह रहा हूँ उस दृष्टि की मूल बात सत्य प्रकाश जी ने अपनी भूमिका में लिखी है। मैं उनकी भूमिका में से एक वाक्य पढ़ रहा हूँ। इन्वर्टेड कामा, रहीम उस मध्ययुगीन सहज मानवीय दृष्टि के रचनाकार थे जो हिंदू और मुसलमानों को इस महादेश का नागरिक मानकर देवी देवताओं के नामों और रूपों के भेदात्मक दृष्टि में एकत्व की खोज करने से विकसित हो रही थी। इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस वाक्य में बहुत सारी बातें हैं, मैं उनकी व्याख्या नहीं करूंगा। आगे चलकर जो कुछ कहूंगा उससे भी उसकी व्याख्या हो जाएगी, और मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि रहीम रचनावली की भूमिका स्वयं पढ़ें। मेरा ख्याल है कि इलाहाबाद के लोगों को संगम का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, पर इस जाने पहचाने अर्थ के अलावा मेरे मन में एक और अर्थ है संगम संस्कृति का, या सांस्कृतिक संगम का। उसकी ओर आपका ध्यान जरूर खींचना चाहता हूँ। और रहीम का उस सांस्कृतिक परिवेश से बहुत गहरा रिश्ता था जिससे संगम संस्कृति या सांस्कृतिक संगम का वातावरण निर्मित हुआ। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह ने 1654 ईस्वी में फारसी में एक किताब लिखी थी। किताब का फारसी में नाम था मज्म उल बहरैन। बहरैन माने समुद्र, मज्म माने मिलना। इसी किताब का साल भर बाद ही स्वयं संस्कृत में उसने अनुवाद किया था। अनुवाद का नाम था समुद्र संगम। फारसी वाली किताब में जो भी है वही थोड़े फर्क के साथ समुद्र संगम में भी है। दारा शिकोह ने संगम संस्कृति या सांस्कृतिक संगम के लिए एक और बहुत बड़ा काम किया था। उसने बनारस और इलाहाबाद दोनों की यात्राएं करते हुए संस्कृत के आचार्यों और पंडितों के सहयोग से और पंडित राज जगन्नाथ के निर्देशन में ब्रैकेट क्योंकि पंडित राज जगन्नाथ उसके गुरु थे शाहजहां के दरबार में, तो पृष्ठ संख्या 45 वह रहते ही थे ब्रैकेट बंद। उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। उनका नाम था सिर्रे अकबर। यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि दारा शिकोह के फारसी में किए गए 52 उपनिषदों के अनुवाद का लैटिन और फ्रेंच में जब अनुवाद यूरोप में हुआ और छपा, उस लैटिन अनुवाद से यूरोप को उपनिषदों के ज्ञान का बोध हुआ। दारा शिकोह के अनुवाद को पढ़कर ही उपनिषदों के बारे में शोपेन हावर ने जाना, नीत्से ने जाना, अमेरिका के इमर्सन ने जाना, वह सब पुराना इतिहास है। यह जो दारा शिकोह के माध्यम से सांस्कृतिक संगम की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसकी शुरुआत का श्रेय अकबर को था। अकबर ने बड़े पैमाने पर संस्कृत के महान ग्रंथों के अनुवाद का काम शुरू करवाया था। अकबर, रहीम और दारा शिकोह तीनों एक बात मानते थे कि हम इस्लाम के माध्यम से जिस तौहीद की खोज करते हैं वही हिंदुओं के दर्शन में अद्वैतवाद है। अकबर ने महाभारत का अनुवाद करवाया, अथर्ववेद का अनुवाद करवाया, गणित की किताबों के अनुवाद करवाए। उसके महान अनुवादकों में मुल्ला बदायूनी थे, दूसरे और बहुत सारे लोग थे। ये जो सारे अकबर के जमाने से प्रयत्न हो रहे थे वे क्यों हो रहे थे? अबुल फजल ने आईने अकबरी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी के 5 कारण बताए हैं। मैं उन 5 कारणों का केवल उल्लेख करूंगा। अबुल फजल ने लिखा है कि पहला कारण तो यही है कि हिंदुस्तान में भाषाएं बहुत हैं, इसीलिए एक आदमी एक भाषा जानता है, दूसरा दूसरी भाषा जानता है, दोनों के बीच मेल की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, उसने यह भी कहा कि दोनों समुदाय के ज्ञानी एक दूसरे के करीब नहीं आते। ज्ञानियों की यह बड़ी भारी विशेषता है, आज के भी ज्ञानी क्या मजाल है कि एक दूसरे से सहमत हो जाएं, अपनी बेवकूफ़ी को लिए दिए लड़ मरेंगे पर दूसरों से संवाद की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरा कारण यह बताया कि बहुत सारे लोग भौतिक सुखों में लिप्त रहने के कारण दोनों धर्मों में ज्ञान की जो बातें हैं उन पर ध्यान नहीं देते। चौथा कारण उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में इस दूरी का एक कारण आलस्य भी है। और पांचवा और आखिरी कारण यह बताया कि एक दूसरे के बारे में जिज्ञासा भी कम है। अकबर ने बड़े पैमाने पर संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराकर इन्हीं पांच कारणों को दूर करने का प्रयत्न किया और उस संगम संस्कृति का सांस्कृतिक संगम की नींव डाली जो रहीम की कविता में मौजूद है। एक और प्रसंग ध्यान में रखना जरूरी है। असल में यह सांस्कृतिक संगम एक स्तर पर नहीं चल रहा था, अनेक स्तरों पर चल रहा था। यह कम लोगों को मालूम है कि मुगल परिवारों में सल्तनत के लोगों में तीन भाषाएं चलती थी। राजकाज की भाषा फारसी, मुगलों की अपनी मातृभाषा तुर्की थी और आगरा से लेकर दिल्ली तक स्थानीय भाषा के रूप में ब्रजभाषा स्वीकृत थी। अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक पृष्ठ संख्या 46 के दरबार और परिवार की एक भाषा ब्रजभाषा थी। यह बात कम लोगों को मालूम है कि अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक प्रत्येक बादशाह ने ब्रजभाषा में कविता लिखी है। अकबर हिंदी में कविता लिखता था, यह तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिख रखा है। उन्होंने अकबर का एक छंद भी उद्धृत किया है। मैं आपको एक कविता औरंगजेब की सुनाऊंगा। उसका कारण है औरंगजेब की जो छवि हिंदुस्तान में बनी हुई है। आप देखिए कि उसकी कविता से वह छवि निकलती है क्या? कवि ही कविता नहीं बनाता, यह तो घनानंद कह गए हैं। कविता भी कवि को कभी कभी बनाती है, पर सच्चा कवि हो तो। पर खैर, औरंगजेब की कविता पढ़ रहा हूँ। चरण धर धर मेरे गृह लालन, भय खाए आए मेरे तन के दुख सब दूर गए, सुख आए मेरे नेरे। मृदंग बजावहु मंगल गावहु, भागन ही पाए कर रही जतन बहुतेरे। साह औरंगजेब प्रीतम अब मैं धन जन्म करत मानत, जब आखन भर हेरे। यह कविता है औरंगजेब की। यह मत समझिएगा कि जब उर्दू कविता आ गई तब ब्रजभाषा की कविता समाप्त हो गई। अब मैं उस बादशाह की कविता का हिस्सा सुनाऊंगा जो स्वयं उर्दू का बड़ा शायर था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की कविता है, प्यारी तेरे प्यारो आयो, प्यारी प्यारी बातें कर प्यारों को मनाइए। अनेक भातिन कर प्यार प्यारे को रिझाइए, आली ऐसो प्यारो कहाँ घर बैठे पाइए। लाइए समुझाइए कौन भातिन कर सुख दे बुलाइए। शाह बहादुर तेरे रस बस भये अनरस, कर कर सौतन सताइए। मैं यह कह रहा था कि मुगल सत्ता के साथ विशेष रूप से अकबर के काल में जो सांस्कृतिक संगम की कोशिशें शुरू हुईं उसी की देन थे रहीम। रहीम अपने समय के सांस्कृतिक केंद्र भी थे। रहीम के दरबार में कवियों का जमघट लगा रहता था। एक किताब है मास्टरे रहीमी, उसमें ऐसे 300 कवियों का उल्लेख है जो रहीम के दरबार में आते जाते थे। ये कवि हिंदी और फारसी के नहीं थे, तुर्की के, अरबी के और बहुत सारी भाषाओं के कवि थे। उसमें नाम सबका दिया हुआ है। अपने युग की संस्कृति के केंद्र थे रहीम। इसका एक और प्रमाण उस युग में मिलता है। उस युग के सबसे बड़े कवि तुलसीदास से रहीम के संबंध पर ध्यान दीजिए। तुलसीदास और रहीम का संबंध था, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन लोकमत में ऐसा विश्वास मौजूद है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने, पृष्ठ संख्या 47 तुलसीदास पर लिखी अपनी किताब में एक छंद उद्धृत किया है और प्रसंग भी। वह यह है कि एक कोई याचक तुलसीदास के पास गया कि मुझे बेटी की शादी करनी है, मुझे कहीं से कुछ पैसे की व्यवस्था करवाइए। तुलसीदास के पास क्या था? तुलसीदास ने दोहे की पहली पंक्ति लिखी, प्रसिद्ध पंक्ति है, सुरतिया नरतिया नागतिया, यह चाहत सब कोय, और उसको देकर कहा कि इसको लेकर रहीम के पास चले जाओ। रहीम ने दो काम किए, एक तो उस दोहे को पूरा किया और दूसरा उसको पर्याप्त धन देकर विदा किया और कहा कि अब पूरा ले जाकर उनको दे देना। दूसरी पंक्ति जो रहीम ने लिखी वह है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। इस दोहे ने एक और कमाल किया। कहीं इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। इस दोहे से तुलसी की माता का नाम लोगों को मालूम हुआ। रहीम के दोहे की इन पंक्तियों के आधार पर आम विश्वास यह बन गया कि तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। वैसे भी अपना जो हिंदू समाज है, कुल मिलाकर पूरा हिंदुस्तानी समाज, उसमें माँ का नाम क्या होता है, माँ का नाम कहाँ कौन लिखता है, पिता का नाम जरूर हर जगह लिखा जाता है, जन्म से लेकर श्राद्ध तक, श्राद्ध में भी कोई माँ को याद नहीं करता। वैसे भी स्त्रियों को याद करने की कोई परंपरा नहीं है, श्राद्ध में स्त्रियों का पिंडदान नहीं होता। कई पंडित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग ज़्यादा जानते होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि तुलसीदास और रहीम का जो यह संबंध है, उसमें भी रहीम की अपने काल में केंद्रीयता और महत्व का बोध होता है। दूसरी बात यह है कि तुलसीदास के संबंध में एक किताब है, गुसाई चरित। वैसे तो लोग उसको प्रमाणिक नहीं मानते, ना भी हो प्रमाणिक, तो भी उसने एक जनश्रुति पैदा की। वह यह है कि रहीम ने बरवे नाई का भेद लिखकर तुलसीदास के पास भेजा। उसको देखकर और उसके छंद के सौंदर्य से प्रभावित होकर तुलसीदास ने फिर बरवे रामायण लिखा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके बारे में भी कोई प्रमाण नहीं है, पर लोकमत जिस तरह से तुलसीदास और रहीम की आत्मीयता को स्वीकार करता है, वह उस काल के सांस्कृतिक संगम का एक बड़ा सबूत है। रहीम अकबरी दरबार के एक रत्न थे, लेकिन उनकी कविता में ऐसा बहुत कुछ है जो कि दरबारीपन से एकदम मुक्त है। मैं रहीम के कुछ दोहे आपके सामने रख रहा हूँ। उन दोहों में दरबारी संस्कृत की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके ठीक पृष्ठ संख्या 48 विपरीत भावनाएं व्यक्त हुई हैं। रहीम का एक दोहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछ न चाहिए वे शाहन के शाह। यह सूफी चेतना है, यह फकीराना अंदाज है जिसमें रहीम बोल रहे हैं। अपने देश के इतिहास के सबसे बड़े दरबार के रत्न होते हुए मेरा अपना व्यक्तिगत ख्याल है कि अकबर से बड़ा दरबार हिंदुस्तान के इतिहास में ना पहले था और ना बाद में हुआ। इतना सुव्यवस्थित, इतना शक्तिशाली, इतना वैभवशाली, रहीम ऐसे दरबार के रत्न थे, फिर भी उनको निरर्थक लगता है। क्या है कि कभी-कभी आप बहुत ऐसी चीज़ों में डूबिए तो ऊब पैदा होती है, चाहे दरबार ही क्यों न हो। आप उनका एक दूसरा दोहा देखें, बहुत ही बारीकी से उसमें रहीम की अपनी प्रवृत्ति व्यक्त हुई है, कविता भी थोड़ी बारीक है। काह करो बैकुंठ ले, कल्प वृक्ष की छांह, रहिमन दाख सुहावनो, जो गलपी तम बांह। यहाँ शुद्ध भावानुभूति के स्तर पर प्रेम की पवित्रता और महानता की अभिव्यक्ति है। उसके सामने बैकुंठ और कल्प वृक्ष दोनों निरर्थक हैं। एक और दोहा देखिए, इस दोहे में भी फिर उसी तरह के दरबारीपन से दूर जाते हुए रहीम, बिंदु म सिंधु समानी, को अचरज कासों कहो, हिरन हार हिरानी, जो देखता है वही चकित है। यह बात हिंदी में केवल एक कवि कह सकता था और कहा है, वह है कबीरदास, कि बिंदु में समुद्र समा गया। एक पूरी दार्शनिक परंपरा है, एक दूसरे ढंग का दोहा है। गई आग उर लाए, आग लेने आई ज्योति, गई थी आग लेने दूसरे के घर, दिल में आग लगा के लौट आई। जो आग लगी है वह बुझाए नहीं बुझ रही है, बहुत कोशिश कर रही है कि बुझा दे लेकिन नहीं। इसके बाद जिस तरह की पंक्ति रहीम ने लिखी है, वह भाषा पर उनके नियंत्रण का सबूत है। भभ की बारी बारी उठे, बिना लोक भाषा के गहरे परिचय के यह पंक्ति पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि रहीम अकबरी दरबार में रहते थे, पर दरबार की प्रवृत्तियों, सीमाओं, मानसिकताओं से काफ़ी दूर भी रहते थे। एक और उदाहरण लीजिए, दरबार के किसी रत्न की गरीब और गरीबी में क्या दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन नहीं, रहीम की कविता में दोनों से दिलचस्पी भी व्यक्त हुई है और दोनों की चिंता भी। मैं केवल कुछ दोहे पढ़कर सुना रहा हूँ। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दूसरा दोहा, पृष्ठ संख्या 49, समय दशा कुल देख के सबय करत सम्मान, रहीमन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। याद कीजिए, मध्यकाल में गरीब और गरीबों की चिंता करने वाले दूसरे महाकवि हैं तुलसीदास और कबीरदास। वह भी मजबूर होकर दीनानाथ को पुकार रहे हैं। रहीम की या किसी भी कवि की काव्य अनुभूति की संस्कृत पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। पूरी दुनिया के बड़े कवियों की अपनी विशेषता, अपनी खासियत, अपनी काव्य अनुभूति की संस्कृति में ही व्यक्त होती है। काव्य अनुभूति की संस्कृति मेरे लिए एक बहुत ही व्यापक धारणा है, जिसकी मैं अभी व्याख्या नहीं करूँगा। मूल बात अभी जो कहानी है वह यह है कि उसकी पहचान का एक बड़ा प्रमाण कवि की भाषिक चेतना में मिलता है। एक उदाहरण देकर काव्यानुभूति की संस्कृति और भाषिक चेतना को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि भाषा के स्तर पर चार तरह के कवि होते हैं। बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी उठान के साथ अच्छी भाषा में कविता लिखना शुरू करेंगे, 5-7 पंक्तियों के बाद भाषा लड़खड़ा जाएगी और कविता भी लड़खड़ा जाएगी। उनसे बेहतर तो वह कवि होते हैं जिनकी कविता की भाषा का एक सुलझा हुआ सुव्यवस्थित रूप होता है। जैसे हिंदी में पंत जी, उनकी हर कविता में शुरू से अंत तक भाषा का स्तर एक है। पर महाकवियों की विशेषता दूसरी है। महाकवि हिंदी में वो हुए हैं जिनके पूरे काव्य को आप देखिए तो भाषा के विभिन्न स्तर दिखाई देंगे। ऐसे हिंदी के तीन बड़े कवि मुझे याद पड़ रहे हैं। महाकवि निराला को आप याद कीजिए, उनकी काव्य भाषा के इतने रूप और स्तर हैं कि आश्चर्य होता है। राम की शक्ति पूजा से लेकर भिक्षुक तक चले जाइए और फिर उनकी गजलों को भी ध्यान में रखिए, पता चल जाएगा कि हिंदी के किसी एक कवि के यहाँ भाषा के इतने रूप और स्तर नहीं हैं जितने निराला की कविता में। निराला ने यह सीखा था तुलसीदास से। तुलसीदास के यहाँ केवल रामचरितमानस में ही भाषा के बहुत सारे स्तर हैं। इस अर्थ में तीसरे बड़े कवि नागार्जुन हैं, जिनके यहाँ आपको बादल को घिरते देखा है, से लेकर अब तो बंद करो हे देव यह चुनाव का प्रहसन तक की भाषा, या फिर उनकी उन गीतों की भाषा जिनमें विद्यापति की प्रतिध्वनि है, सुजन नयन मणि सुन 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 धनी वगैरह। तो ये जो भाषा की विविधता है, भाषा के रूप और स्तर हैं, उससे कवि की सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है और उसी के माध्यम से उसकी काव्य अनुभूति की संस्कृति भी व्यक्त होती है। रहीम की भाषिक चेतना से उनकी काव्य अनुभूति की संस्कृति की पहचान करते हुए दो तीन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। एक तो ये कि रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, पृष्ठ संख्या 50, संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली सबके जानकार थे। उनकी कविता में इन सब के प्रमाण मिलते हैं। उनकी कविता की भाषा में सत्ता की भाषा फारसी के लिए जगह है तो शास्त्र की भाषा संस्कृत के लिए भी जगह है। पर उनका कवि मन सबसे अधिक रमता है ब्रज और अवधी में कविता लिखने में। सबसे बेहतर कविता रहीम की ब्रज और अवधी में ही लिखी गई है। उनकी एक किताब है कविताओं की मदनाष्टक, जिसमें संस्कृत के साथ साथ सीधे खड़ी बोली के उदाहरण हैं। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा, आप इसमें देखिए संस्कृत भी है और सीधे खड़ी बोली भी है। दृष्टवा तत्र विचित्रताम तरुलता मैथा गया बाग में, काचित तत्र कुरंग शाव कनयनी गुल तोड़ती थी खड़ी। दोनों एक साथ आपको दिखाई देगा। यह परंपरा वह है जो कभी खुसरो ने शुरू की थी, आधी पंक्ति फारसी में और आधी ब्रजभाषा में। यह उससे एक कदम और आगे है, आधी पंक्ति संस्कृत में और आधी खड़ी बोली में। खेट कौतुकम नाम की उनकी एक किताब है, उसमें संस्कृत और फारसी दोनों का मेल है। बरवै जो लिखा है वह अवधी में है और सबसे अधिक लोकप्रिय उनके दोहे अधिकांशतः ब्रजभाषा में हैं। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि रहीम मध्यकाल में भारत की सांस्कृतिक बहुलता, भाषिक बहुलता के प्रतिनिधि कवि हैं। एक बात और मुझे कहनी है, बड़े से बड़ा कवि अपने समय और इतिहास में अपनी स्थिति से और समाज में अपनी और स्थिति से प्रभावित जरूर होता है। रहीम जिस दरबारी और सामंती माहौल में रहते थे उससे अछूते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वह सब उनको छू ही नहीं गया, पर उन्होंने रास्ता निकाला। सामंतवाद और दरबार में रहना आश्चर्यजनक नहीं है, आश्चर्यजनक है उससे लड़ते हुए बाहर निकलना। रहीम की दो कविता की पुस्तकें हैं, एक है नगर शोभा और एक है बरवै नायिका भेद। नगर शोभा समाज शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्व की पुस्तक है, उसमें लगभग 50-60 जातियों का उल्लेख है। मेरा ख्याल है कि मध्यकाल में शायद ही किसी और किताब में इतनी जातियों का कविता में उल्लेख है। यह समाज शास्त्रीय दिलचस्पी और अध्ययन का विषय है। लेकिन इन दोनों किताबों में जो बात मुझे बेचैन कर रही थी वह यह कि रहीम ने हर जाति की केवल स्त्री को ध्यान में रखा, और स्त्री भी ये न समझिए कि जवान सुंदर, कामलीला और क्रीड़ा में प्रवीण और उसी से संबंधित उसके गुण या दुर्गुण। सामंती दौर में स्त्री को केवल कामना का लक्ष्य मानने की जो प्रवृत्ति थी उससे रहीम प्रभावित दिखाई नहीं देते हैं। रहीम की लोकप्रियता के कारणों के बारे में ध्यान देना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो स्वयं तुलसी को हिंदी का सबसे बड़ा कवि मानते हैं, उन्होंने लोकप्रियता पृष्ठ संख्या 51 के प्रसंग में रहीम को तुलसीदास के समान माना है। कोई कवि लोकप्रिय क्यों होता है, इसके कारणों की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। मैं उनका उद्धरण पढ़ रहा हूँ। जीवन की सच्ची पर स्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। अर्थात कविता की लोकप्रियता के लिए दो तीन बातें जरूरी हैं। एक तो जनजीवन की सच्ची पर स्थितियों की पहचान, दूसरे उसको मार्मिक रूप में व्यक्त करने की क्षमता। बिना संदेह के आज भी आधुनिक काल में भी निराला से लेकर नागार्जुन तक लोकप्रिय कवि वही हैं जिनमें ये दोनों बातें हैं। मतलब जनता के जीवन की सच्ची पर स्थितियों की पहचान हो और सहज ढंग से व्यक्त करने की क्षमता हो, यह रहीम में थी। और इसीलिए रहीम हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। अनेक दोहे हैं, मैं पढ़कर सुनाऊंगा नहीं, आप सब लोगों को रहीम के दोहे मालूम हैं। दोहों के प्रसंग में एक बात और कहना चाहता हूँ। रहीम के बारे में कुछ लोगों ने मान रखा है कि रहीम ने नीति के दोहे लिखे। रहीम ने नीति के दोहे भी लिखे, लेकिन यह जोर देकर कहना चाहता हूँ कि केवल नीति के दोहे उन्होंने नहीं लिखे। असल में रहीम के दोहों में लोक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है, और इन अनुभवों से सहज रूप से पाठक तादात्म्य अनुभव करता है। इसलिए रहीम की कविता लोगों को पसंद आती है। उन्होंने जीवन के लोक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति अपने अनेक सुरठों में की है। मैं जो आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ वह यह कि रहीम की सारी लोकप्रियता या तुलसीदास की भी लोकप्रियता का कारण क्या है, मेरा एक अनुमान है। असल में जनजीवन में वही कविता लोकप्रिय होती है जो संकट के समय याद आए और संकट में काम आए। हमारे आपके सबके जीवन में कभी ना कभी समस्या, संकट, परेशानी आती ही है। ऐसे में जो कवि और जो कविता याद आती है, जीवन जीने में जो कविता मदद करती है, उसी से हम प्रेम करते हैं। आज की अधिकांश कविता अगर अलोकप्रिय है तो उसका एक कारण यह है कि लोक जीवन के अनुभवों से उसका संबंध नहीं है। इसलिए संकट आने पर न वह याद आती है और न काम आती है। ऐसी कविता की एक और विशेषता यह है कि कवि की विश्व दृष्टि और आम जनता की विश्व दृष्टि के बीच जितनी दूर तक सहभागिता होती है उतनी ही दूर तक कविता की लोकप्रियता जाती है। रहीम ऐसे कवि हैं जो सहज रूप से हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। ब्रैकेट में सत्य प्रकाश मिश्र स्मृति व्याख्यान।